आरव आयु को लेकर खुराना मेंशन पहुंच चुका था। आयु को पहले वहां जाने से डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलने पर उसने गौरवी जी को आरती की थाली के साथ देखा, आयु के सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो गए। आयु और आरिशा को देखकर जहां बाकी सब हैरान होने के साथ खुश हो रहे थे, वहीं माहिरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह आयु उसके सामने होगी, और वो भी अपनी बेटी के साथ। माहिरा पीछे की तरफ खड़ी थी, इसलिए आयु का उस तरफ ध्यान नहीं गया। गौरवी जी ने पहले आयु और आरिशा की आरती उतारी, आयु ने फिर उनके पैर छुए। आरिशा सब कुछ काफी गौर से देख रही थी। गौरवी जी ने आरिशा को अपनी गोद में लेना चाहा, लेकिन वो उनके लिए अनजान थी, इसलिए उनके पास जाने से पहले आरिशा ने आयु की तरफ देखा। आयु ने उसे प्यार से कहा, आरू ये दादी है, जैसे मेरे दादू हैं वैसे ही ये तुम्हारे डैड की दादी है। आयु के समझाने पर आरिशा उनके पास चली गई। गौरवी जी ने आयु का वैसे ही गृह प्रवेश करवाया था जैसे वो शादी करके पहली बार आरव के साथ आई थी तब करवाया था। अंदर आते ही अयान आयु के गले लग गया। उसने आयु को सहलाते हुए कहा, आई एम सो हैप्पी टुडे, कम से कम मुझे तो बता सकती थी तू कहाँ थी, तुझे नहीं पता मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। नहीं बता सकती थी इसलिए नहीं बताया, कैसे हो तुम, आयु अयान से अलग होकर बोली। वो दोनों पहले की तरह घुल मिलकर बातें करने लगे। आरव उनके पास पहुंचा और मुंह बनाते हुए कहा, जहां तक मुझे याद है हम भी इतने टाइम बाद ही मिले थे, और तुमने इतना वार्म हग मुझे तो नहीं दिया था, उल्टा मुझ पर गुस्सा कर रही थी। क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, तुम्हें अभी भी जेलस फील हो रहा है, आयु ने हैरानी से सिर हिलाकर कहा। यह तो मुझे उम्र भर रहेगा, तुम बूढ़ी हो जाओगी और किसी दूसरे बूढ़े से बात भी करोगी तो आई विल फील जेलस, आरव ने जवाब दिया। आयु ने उसकी बात की तरफ फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने दूसरी तरफ देखा तो साक्षी और रायशा खड़ी थीं। आयु पहले जाकर साक्षी के गले लगी और फिर रायशा के। रायशा आयु को देखकर बोली, चलो आपका ध्यान तो गया कि हम भी यहाँ पर हैं, वरना मुझे लगा था कि आपको भाई और अपने दोस्त के अलावा किसी और के लिए फुर्सत नहीं मिलने वाली। आयु उसकी बात पर मुस्कुराकर रह गई। फिर साक्षी आयु की तरफ देखकर बोली, ये सब तुम्हें देखकर खुश हो सकते हैं या इन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया होगा, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। अरे तुम ऐसे कैसे हमारी लाइफ से जा सकती हो, तुम्हारी नाराज़गी आरव से थी तो उससे बात नहीं करती, हमारे पास तो वापस आ सकती थी ना, अब देखो हमें इतने दिनों तक हमारी आर्या से दूर रहना पड़ा। दीदी अब उसका नाम आर्या नहीं आरिशा है, आप उसे आर्या कहेंगी तो वो कन्फ्यूज हो जाएगी, आयु ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हर कोई आरिशा को गोद में लेने के लिए अपनी बारी का वेट कर रहा था। गौरवी जी के बाद में अयान ने उसे अपनी गोद में उठाया तो फिर रायशा ने। साक्षी अभी भी अपनी बारी का वेट कर रही थी। एक ही दिन में आर्या की इम्पोर्टेंस कम हो गई थी तो वो मुंह बनाकर एक कोने में खड़ा था। आयु उसके पास गई और उसे गोद में उठाते हुए कहा, लगता है आपकी बहन को सारी अटेंशन मिल रही है, इस वजह से तुम्हें जलन हो रही है, बिल्कुल अपने डैड जैसी हरकतें हो रही हैं तुम्हारी, तुम मेरी तरह हो तो उनकी जैसी आदतें मत अपनाओ। मैं डैड के जैसा नहीं बनूंगा, लेकिन आपको बदले में सारी अटेंशन मुझे देनी पड़ेगी, आर्या मासूमियत से बोला। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और आर्या के गाल पर हल्का सा किस किया। आरिशा को जिंदा देखकर कबीर भी हैरान था, उसने उस दिन दोनों बच्चों को काफी टाइम तक ढूंढा था फिर भी उसे सिर्फ आर्या ही मिला था। कबीर ने आयु के पास आकर पूछा, मैंने उस दिन दोनों बच्चों को ढूंढा था फिर मुझे आरिशा क्यों नहीं मिली, क्या आप उसे पहले ही अंदर ले गई थी? आयु ने धीमी आवाज में कहा, नहीं वो आउट हाउस वाले हिस्से से बाहर आ चुकी थी और साहिबा के साथ थी, इस वजह से तुम मुझसे नहीं ढूंढ पाए। थैंक यू सो मच कबीर, जो उस दिन तुमने मेरे बच्चे को ढूंढा और उसे बचाया, वरना पता नहीं वो आज किस हालत में होता, बोलते हुए आयु की आंखें नम होने लगी। कबीर से बात करते हुए आयु की नज़र माहिरा पर गई जो उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देख रही थी। आयु का मन कर रहा था कि उसकी हरकतों पर अभी जाकर उसे कसकर एक तमाचा लगाए और सभी को उसकी सच्चाई बताए, लेकिन फिलहाल उसने खुद को कंट्रोल किया। आयु और आरिशा के मिलने पर खुराना मेंशन में फिर से खुशियों का माहौल था, वहां ज्यादातर शांति रहती थी, आज वहां काफी चहल पहल थी। आयु को हर कोई नजर आ रहा था सिवाय छवि सिंघानिया के। बातें करते हुए जब सब लिविंग रूम में बैठे थे तब आयु ने आरव से पूछा, मिसेस सिंघानिया नहीं आई, क्या उन्हें टाइम नहीं था, तुम्हारे और उनके बीच के रिलेशन तो ठीक है ना? छवि का जिक्र आने पर अचानक आरव के चेहरे पर मायूसी आ गई, उसने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से कहा, शी इज नो मोर, उनकी ब्रेन की प्रॉब्लम तो ठीक हो चुकी थी लेकिन वो कैंसर से हार गई थी, 2 साल पहले उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, छवि इस दुनिया में नहीं रही थी। ये सुनकर आयु को भी बुरा लगा, उसने आरव का हाथ सहलाया और उसे तसल्ली देते हुए कहा, अब वो एक बेहतर जगह पर है। छवि के मरने की बात से सब लोगों के चेहरे एक बार के लिए उतर गए थे। अयान ने उन सबका मूड फिर से लाइट करने के लिए कहा, ठीक है अब क्या ऐसे ही चेहरे पर 12 बजा कर रखने हैं, इतने टाइम बाद सब एक साथ आए हैं, दोनों बच्चे जिंदा हैं और हमारे बीच सही सलामत है, आयु भी आ गई है तो ग्रैंड पार्टी तो बनती है। कोई जवाब में कुछ कहता उससे पहले आयु जल्दी से बोल पड़ी, नहीं मुझे कोई पार्टी नहीं करनी है। आयु ऐसा क्यों कह रही थी आरवी अच्छे से समझ रहा था। पिछली बार पार्टी से ही दोनों बच्चे गायब हुए थे। ज्ञानजी ने आयु के चेहरे की तरफ देखकर कहा, तुम सब यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये लड़की पिछले कई सालों से किसी भी गेट टुगेदर में नहीं गई है। हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल, इसका रूटीन सिर्फ इतना ही है। कोई बात नहीं दादू, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा और आई प्रॉमिस मैं करके रहूंगा, आरव ने आयु की तरफ देखकर जवाब दिया। आपस में बातें करने के बाद उन्होंने साथ में लंच किया और फिर रेस्ट करने के लिए अपने अपने कमरों में जा चुके थे। माहिरा और ज्ञानजी इस वक्त अलग अलग गेस्ट रूम में रुके हुए थे, बाकी सबके कमरे वहां पर बने हुए थे। आर्या और आरिशा इस वक्त साक्षी और अयान के साथ में थे, जबकि आरव और आयु अपने कमरे में अकेले थे। वहीं माहिरा गेस्ट रूम में अकेले गुस्से में पैर पटक रही थी। उसने तुरंत मिस्टर लूथरा को कॉल करके कहा, डैड आपको यकीन नहीं होगा यहाँ क्या हुआ है, अचानक से आरव की मरी हुई बेटी और उसकी पत्नी पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गई। आई स्वेयर मेरा मन किया कि उन दोनों को अभी मार दूं, लेकिन अभी मेरा कोई बस नहीं चल रहा है। पूरी बात सुनने के बाद मिस्टर लूथरा भी हैरान थे। उन्होंने जवाब में कहा, तुम गुस्से में कोई बेवकूफी मत करना, अगर गलती से भी आरव को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो खुद ही तुमसे सारे रिलेशन खत्म कर देगा। जानती हूँ डैड, तभी मैं शांत बैठी हूँ। मुझे फिलहाल इस बात की फिक्र है कि कहीं उस साइकोपैथ ने आयु को ये तो नहीं बता दिया कि मैं उसके साथ थी। हालांकि ये सारा प्लान उसका था, लेकिन मैंने ही उसे यहाँ की अपडेट दी थी। अगर ऐसा हुआ तो वो आरव को सब कुछ सच बता देगी, माहिरा ने जवाब दिया और इस वक्त उसके चेहरे पर गहरे परेशानी के भाव थे।
मिस्टर लूथरा ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, वैसे देखा जाए तो बताना होता तो अब तक बता चुकी होती। तुम ऐसा करो, नॉर्मल रहने का दिखावा करो, बाकी मैं करता हूँ चीजें मैनेज। ये प्रोजेक्ट मैंने इसीलिए शुरू किया था ताकि आरव को पूरी तरह अंडरवर्ल्ड में इन्वॉल्व कर सकूं। एक बार उसने पूरी तरह यहाँ अपने कदम रख लिए तो फिर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा, ना तो उसे अपनी नॉर्मल लाइफ वापस मिलेगी और ना ही अपनी फैमिली। बस कुछ दिन का सब्र कर लो, माहिरा ने उनकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया। इस बार उसने आरव को अपने पास हमेशा लाने के लिए काफ़ी सॉलिड प्लान बनाया था। बस उसे कुछ भी करके आयु से ये पता करना था कि कहीं फैज ने उसे उसकी सच्चाई तो नहीं बता दी।